परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग लघु वासुदेव मरणम इस विषय को श्रवण कर रहे हैं। इसमें करीब 12 वर्णक 12 प्रकरण हैं। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। मूल विषय है अज्ञान को निवृत्त करने के लिए आचार्यों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, अध्यारोप और अपवाद पूर्वक ही जो तत्व ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, उसी से परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होगी। शिष्य गुरु के पास कैसे जाए, गुरु कैसे हो, अपने अंदर अधिकारिता लाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब भी आप लोगों ने सुना। जब आचार्य के पास जाए, उनको संबोधित करके क्या प्रश्न होना चाहिए, तो 3 प्रश्न करने के लिए कहा था। जीवः कः, ईश्वरः कः और जगत कीदृशम्। ये जो 3 चीजें हैं, कहां से आई और कैसे ये जाएंगी, इति प्रश्नम कुर्यात्, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। ये प्रश्न करने वाला जो होगा, जो अधिकारी है, तो श्रुतियों में जैसा बताया, परिच्छलोकान कर्मचितान, जो ये लोक है, लोक का मतलब होता है दिखाई देने वाला, लोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोकाहा, और ऐसे लोक की प्राप्ति होती है किसके द्वारा, कर्मों के द्वारा, इसे इसका नाम है कर्मचित। चित एक तकार है, पूरा तकार, डबल तकार नहीं, कर्मचित मतलब कर्म के द्वारा प्राप्त हो, कर्मचित है, उसी में संचित जोड़ देते ना, सम उपसर्ग लगाए संचित बन जाएगा। तो कर्म का फल है इस लोक की प्राप्ति होना। जिस लोक में हम लोग आए हैं, तो ब्राह्मणो निर्वेदम, वो जो ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म की जिज्ञासा होने से पहले क्या होना चाहिए, तो निर्वेदम आयात, उसमें निर्वेद आना चाहिए। निर्वेद क्या है, तो निर्वेद का सामान्य अर्थ होता है वैराग्य, वैराग्य आना चाहिए। क्या वैराग्य का स्वरूप होगा, तो नास्ति अकृतः कृतेन, ये जो कृत मतलब कर्म, और परमात्मा कैसा है, अकृत, जो किया जाए भोगा जाए वो सब के सब अनित्य है, और जो परमात्मा वो नित्य है, अर्थात नित्य की प्राप्ति अनित्य के द्वारा नहीं हो सकती। इस प्रकार से जो विचार करे, अकृतः कृतेन नास्ति, जो अकृत है वह कृत के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा जो वह अकृत परमात्मा, तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, विशेष रूप से जानने के लिए जाए। अभी तो सामान्य रूप से भी ज्ञान नहीं है, विचार करके देखिए, अभी हम लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि हम आदमी हैं। आदमियों के ऊपर कोई खतरा आ जाए तो सबको चिंता होने लगती है, हमारा जो भाव है कैसा फैला हुआ है और हम अपने को कैसे सिमेट सकते हैं। आत्मत्वेना आगे प्रकरण में आने वाला है कि किस प्रकार से एक ही आत्मा अनेक कार्यों के द्वारा, उपाधि के द्वारा अनेक दिखने लगता है। जैसे अनात्मा अनेक रूपों में दिखता है, वैसे आत्मा भी दिखने लग जाते। विचार कीजिए, हम लोग बंबई नगरी में हैं, कोई कह देवे कि आदमी मात्र के लिए अब संकट का समय आ गया, तो मैं गुजराती हूं, मराठी हूं, यूपी का हूं, मध्य प्रदेश का हूं, ये चिंता रहेगी क्या? अब तो एक ही बात की चिंता है कि आदमी के ऊपर खतरा आ गया, और यदि उसमें विभाजन कर दिया जाए कि अमुक प्रांत वाले के लिए खतरा है, अमुक प्रांत वाले के लिए नहीं है, तो थोड़े से राहत मिलती, फिर अपने आप को हम देखते हैं कि हम किस प्रांत से आते हैं। चाहे ये सामान्य मनुष्य की बात हो अथवा जातिगत, ब्राह्मणों के ऊपर संकट आने वाला है तो क्षत्रिय निश्चिंत है, क्षत्रियों के ऊपर आने वाला है तो वैश्य निश्चिंत है। इस प्रकार से हम फैलते कैसे हैं, तो कहा इस कॉलोनी में, जो कोई कॉलोनी है, पहले तो कह देते हैं कि भारत के लोग अच्छे नहीं होते, पूरे भारतीय चिढ़ जाएंगे। कह दिया भारत में अमुक प्रांत के लोग अच्छे नहीं होते, तो बाकी प्रांत वाले खुश। अब जिस प्रांत को खराब कहा वो नाराज। कहा अमुक प्रांत में भी अमुक शहर के लोग खराब हैं। अब प्रांत वाले लोग उतने नाराज नहीं जितना वो शहर वाले लोग नाराज हैं। इस शहर में भी अमुक कॉलोनी जो है ना वो खराब है। शहर से हट गए, अब कॉलोनी में आ गए। कॉलोनी में भी एक जो बिल्डिंग है ना वो खराब है। उस बिल्डिंग में भी अमुक माला खराब है। अमुक माला में भी एक जो फ्लैट है वो खराब है। उस फ्लैट में पांच लोग हैं जिसमें से एक खराब है। चार से भी आपको अलग कर दिया। अंतिम में क्या लगा कि मैं खराब हूं? ये तो हो गया कैसे फैले हुए थे। पहले पूरे भारत को जब गाली दी तब भी बुरा लगा, वहां से हटते हटते केवल अपने ऊपर बात आ गई, भारत गया, प्रांत गया, शहर गया, कॉलोनी गई, बिल्डिंग गई, फ्लैट गया, पांच में से एक रह गया। और ऐसे ही फैलते चले जाओ, ये पांच अच्छे हैं बाकी सब खराब है, तो फिर उसमें भी प्रसन्नता होती, अपने परिवार को अच्छा कहा, नहीं नहीं इस बिल्डिंग के लोग अच्छे हैं और लोग खराब है, तब भी खुशी होती है। तो कैसे हमारे सुख और दुख का जो क्षेत्र है घटता रहता है और बढ़ता रहता है, ये जो तारतम्य है, इससे स्थायी रूप से न तो इसको सुख कह सकते हैं न दुख कह सकते हैं। इसलिए परीक्ष लोकान, इसका अच्छी तरह से परीक्षण करके विचार किया जाए तो यहां जिन चीजों को भी देखते हैं दो पहलुओं से युक्त हैं, अतः उसमें निर्वेद आना चाहिए। आश्चर्य तो यह है, ये बात हम प्रायः सुनाते हैं, वैराग्य के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। एक होता है अंतस्त्यागो बहिस्त्याग, ऐसा आचार्यों ने कहा है विवेक चूड़ामणि में। बाहर के त्याग की अपेक्षा अंदर का त्याग ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर से कई बार हम लोग मना कर देते हैं, नहीं चाहिए, लेकिन मन में क्या रहता है, ले लेता तो अच्छा होता नहीं। तो अंतस्त्यागो बहिस्त्याग एक तो ये है। दूसरा है स्वाभाविक त्याग और एक होता है बनावटी त्याग। स्वाभाविक त्याग वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है ना, तो हम लोगों को बहिर्मुखी बनाया है। ये आप सुनते ही हो, कठोपनिषद में आता है ना ये मंत्र। तो खानी, खानी का मतलब इंद्रियाणी, खमखे खानी बनेगा ये। और ये है कैसे, तो परांची, हाँ, बाहर की ओर देखने वाली है इंद्रियां। और अभी जो साधक के लक्षण बताए थे, जिसमें शुरू में बता दिया सम दम, अब यही समस्या आती है ना। ब्रह्मा जी ने जिधर की ओर प्रवाह किया, जैसे मछली पानी जिधर से बह करके आता है उधर की ओर चढ़ने का प्रयास करती है, तभी तो इसका नाम पुरुषार्थ पड़ेगा। पानी का नीचे की ओर बहने का तो स्वभाव है, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना ये उसका पुरुषार्थ है। इसी प्रकार से हम लोगों की प्रायः जो वृत्ति है, जो प्रवाह है, वो संसार की ओर ही है, उससे मुड़ करके ऊपर की ओर चलना ही पुरुषार्थ है। इसके लिए प्रेमपुरी में घुसते ही ऊपर चढ़ना पड़ता है, चाहे लिफ्ट से आओ चाहे सीढ़ियों से आओ, आना तो पड़ेगा ऊपर ही, और इधर से फिर ऊपर ही जाने की कोशिश करनी है। कोई बता रहे थे कि महात्मा जी ऐसे थे, पेड़ के ऊपर जब चढ़ने लगे तो अपने जूता चप्पल और जो सामान था वो भी पीठ पे लाद लिया। बोले आप पेड़ पे चढ़ रहे? बोले हाँ। तो सामान क्यों ले जा रहे? बोले क्या पता ऊपर से लौट के आऊं या ना आऊं, कहीं ऐसा ना हो। तो ये जो पुरुषार्थ है सामान्य प्रवृत्ति से हट करके और विशेष रूप से कस्त्वम को हम कुत आया, तो ये सब जो चिंतन किया जाए विचार किया जाए, ये स्वाभाविक वैराग्य के लक्षण हैं। प्रायः संसार में जितने भी फूलों को हम लोगों ने देखा है, जब वो खिलते हैं तो उसकी पंखुड़ियां बाहर की ओर होती है। कोई ऐसा फूल आपने खिलते हुए देखा है जिसकी पंखुड़ियां अंदर की ओर हो? ये बहुत कम देखने को मिलेगा। कम क्या, ना के बराबर ही समझो। जब बोलते अभी उम्र क्या है, खाने पीने मौज करने की उम्र है। हाँ, वेदांत तो जब मुंह में दांत न रह जाए तब वेदांत है। अभी तो दांत अच्छे हैं, अभी तो खाओ पियो। इसलिए भव्य देहे पटु सुकरणेशु आलये श्री समृद्धे, एक हुए जिनका नाम था प्रत्यक पुष्पेंद्र सरस्वती, आचार्य का नाम है प्रत्यक पुष्प। ब्रह्मा जी ने तो बनाया हम लोगों को परांची खानी, बाहर की ओर देखने का स्वभाव है, लेकिन अब हमने क्या शुरू किया, बाहर की ओर ना देख करके अपने अंदर की ओर देखना। तो एक पराग पुष्प है और एक प्रत्यक पुष्प है। पुष्प तो सब है, जैसे उस दिन बताया था गुजरने के बाद अंतिम में बोलते क्या ले गए, फूल ले गए, तो फूल ही हैं सब। तो ये जो पराग पुष्प था अब क्या बन गया, प्रत्यक पुष्प, अपने अंदर की ओर देखने लगे। भव्य देहेशु पटुषु करणेशु, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है प्रत्यक पुष्पेंद्र सरस्वती के बारे में कि बचपन से ही उनका ऐसा स्वभाव था, जब हम लोगों के शरीर में कोई कष्ट होता है इसको देख करके भी वैराग्य आवे तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा है। जो जो अच्छी चीजें हैं, वैराग्य होना, भजन करने का मन होना, माला जपने की इच्छा होना, ये सब कब संभव होता है, जब भगवत कृपा होती है। चाह करके भी हम नहीं कर पाते कई बार, पहले तो इच्छा ही नहीं होती, इच्छा हो भी जाए तो समझ लेना यही भगवान की कृपा है। एक अच्छे सज्जन है, बड़े सत्संगी है, और नाम नहीं लूंगा, बड़े अच्छे पोस्ट पर भी है वो हमेशा एक ही बात बोलते, स्वामी जी इतने वेदांत पढ़ता हूं सुनता हूं, लेकिन वासना की प्रबलता इतनी होती है कि उस समय हमारा सारा ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। ऐसा क्यों है? हमने कहा आप अपने वासना से परेशान हो ना, ये भी एक साधक का लक्षण है, भगवान की कृपा है। नहीं तो लोग वासना पूर्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं, एक पूरी नहीं हुई कि दूसरे की इच्छा हो जाए। ये ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये कौन बोलते हैं? बोले अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल के रहने वाले लोग, ये लोग ऐसे बोलते हैं। जैसे ऊपर के लोगों के बारे में आपने सुना था, ऐसे नीचे का लोग भी है ना, पृथ्वी से 10,000 योजन नीचे अतल है, उससे 10,000 योजन नीचे वितल है। अच्छा, जितने ये नीचे है उतने उसकी लंबाई चौड़ाई भी उतनी ही है। ये 10,000 योजन नीचे है तो उसकी लंबाई चौड़ाई भी कितने हैं? 10,000 योजन है। और वहां के रहने वालों का जो शरीर है वो तो और भयंकर है। अच्छा, नरक की जब बात आती है, नरक कहां है? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये बताए कि जो नरक की बात चलती है ये नरक है कहां, तो सुखदेव जी ने कहा अस्याम जगत्याम, इसी जगत में वो नरक। और कितने नरक है आप लोगों ने सुना है? हाँ अच्छा सुना ही होगा ना, होके तो नहीं आए, क्या पता होके आए होंगे, भगवान जाने, सब होके आ चुके हैं। और अब यदि सावधान नहीं हुए तो महती विनष्टि होने वाली है, मरा विनाश हो जाएगा अपना, सावधान हो जाना चाहिए। तो स्वर्ग नरक जब देखते हैं तो इस संसार में विचार करो, बाहर की ओर जब हम इंद्रियों के द्वारा विषयों में प्रवृत्त होते हैं तब जो मन अशांत होता है तो वहां क्या वैराग्य होगा, वेदांत श्रवण करने की इच्छा होगी? कदापि नहीं। परांचिखानी व्यत्रण स्वयंभू का ही ये उल्टा है कि भव्य देहे पटुषु करणेशु, अपने शरीर को देखें। बोले उन आचार्य जो थे प्रत्येक पुष्पेंद्र सरस्वती, उनका शरीर बड़ा भव्य था, सुंदर था। अपने शरीर की सुंदरता से भी कई बार वैराग्य न होकर क्या बढ़ता है, राग होने लगता है कि ऐसा ही रहूं, जबकि सबको पता है कि ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वभाव है परिवर्तित होना है, इसको बदलता जाएगा। तो भव्य देह है, शरीर की सुंदरता है, लेकिन मन में लगाव किधर है, तो अंतर्मुखी है। भव्य देहेशु, शरीर कई बार सुंदर हो तो कुछ इंद्रियों में विकृति आ जाती है, तो उनकी इंद्रियां भी क्या है, सब के सब कुशल हैं, ठीक है। भव्य देहेशु पटुषु करणेशु, करणों में इंद्रियों में पटुता है, कुशलता है, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने कार्य करने में समर्थ हैं। और आलये श्री समृद्धे, घर में कई बार परेशानी आ जाती है तो ये भी नहीं है, घर में सारी समृद्धि है, भूति विभूति से युक्त है। आलये श्री समृद्धे, फिर क्या है भाई, तो कहा कौमारान्ते, बस अभी अभी कुमार अवस्था पूरी हुई है और युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस उम्र में लोग प्राय लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़के ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने आत्मदेव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कौमारान्ते वयसी कथम अप्रवृत्ते च दुखे, चलो शरीर भी ठीक है, इंद्रियां भी ठीक है, घर का वातावरण भी ठीक है, अकस्मात कोई कष्ट आ जाता है, दुर्घटना घट गई, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक आपदा आ गई हो, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा से पूरी तरह से वातावरण ठीक है। जैसे कि अभी हम यहां बैठे हैं सब लोग, तो मन में अभी शांति है कि नहीं है, आपको हमारी सारी बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हैं, क्या विषय चल रहा है। यदि मन अशांत हो तो ये सुनते हुए भी हमें सुनाई नहीं देगा, पढ़ते हुए भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मन अस्थिर है। पहले तो मन में स्थिरता होनी चाहिए, स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। तो कौमारान्ते वयसी कथम अप्रवृत्ते च दुखे, प्रत्येक पुष्पी प्रसव विधया, जब वो फूल की कली थी, जब वो खिलने लगा तो उसकी पंखुड़ियां क्या हो गई, अंदर की ओर हो गई। ये आचार्य कैसे हैं, उसी तरह के ये फूल हैं, जैसे ऐसा फूल बहुत दुर्लभ होता है जो खिल करके अंदर की ओर हो, ये अब अपने वृत्ति को अंदर की ओर करने लगे। परांचिखानी जो ब्रह्मा जी ने बनाया, नाम उनका क्या है, तो प्रत्यक पुष्पी, तो प्रत्यक का अर्थ होता है पराग, और प्रत्यक का अर्थ जानते ही है, प्रत्यगात्मा परागात्मा प्रयोग किया जाता है। जब इसी आत्मा की वृत्ति बाहर की ओर विषयों में जाए तब इसका नाम पड़ गया पराग आत्मा। परस्मै अंचितम प्रकाशितम, अर्थात दूसरों के लिए, अर्थात दूसरों वस्तुओं को अपने से भिन्न अनात्म पदार्थों को जब हम प्रकाशित करते हैं तब तो हमारा नाम पड़ता है परागात्मा। यहां आने के बाद नींद आती है कि नींद खुल जाती है? हाँ, तब तो ठीक है। बाहर की ओर विषयों को जब हम प्रकाशित करने वाले होते हैं तब नाम पड़ा परागात्मा, और अंदर की ओर स्वस्मयी अंचितम प्रकाशितम इति प्रत्यक, अपने आप को जब हम प्रकाशित करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पहले तो अपने से भिन्न वस्तुओं को दृश्य की ओर थे, अब लग गए दृग की ओर, दृष्टा और दृश्य जो बोलते ना, दृग और दृश्य, एक दृग दृश्य विवेक प्रकरण भी है, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं। और आगे सिद्धांत बिंदु में अप्पे दीक्षित ने क्या कहा है कि दो ही पदार्थ हैं वही अनेक बन जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जब दृश्य की ओर हो गए तो परागात्मा, जब दृष्टा की ओर हो गए, दृग की ओर हो गए, तब इसी का नाम पड़ गया प्रत्यगात्मा। प्रत्यक पुष्पी प्रसव विधया, जो कली खिलते ही उसकी पंखुड़ियां अंदर की ओर हो जाए, ऐसा स्वभाव उन आचार्य का था जिनका नाम ही पड़ गया प्रत्यक पुष्पेंद्र। अंदर की ओर खिलने वाले फूलों में भी वे राजा हैं, केवल प्रत्यक पुष्प नहीं है, प्रत्यक पुष्प इंद्र है, देवताओं के राजा जैसे इंद्र हैं, ऐसे अंदर की ओर खिलने वाले फूलों में भी वो राजा है। जो जो अपने आत्मा का चिंतन करते वो सबके सब हो गए प्रत्येक पुष्प, लेकिन एक क्षण के लिए भी नहीं बाहर की ओर अपने वृत्ति को जो जाने देता है वह वास्तव में प्रत्येक पुष्पेंद्र है। विद्यारण्य स्वामी जी ने जो पंचदशी में लिखा है कि आ सुप्ते आ मृते कालम, क्या होना चाहिए? हाँ, सवेरे से उठ करके और रात्रि में जब तक बिस्तरे पे न चले जाए तब तक क्या करना चाहिए? वेदांत के चिंतन के द्वारा अपने समय को व्यतीत करे। वहां चिंतित इसलिए कह दिया है कि कई बार पुस्तक हाथ में न हो, कोई सुनने वाला न हो, तो जो सुना हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसी के वृत्ति के बार बार आवृत्ति हो, इसलिए चिंतन, चिंतन करना चाहिए। नएद वेदांत चिंतया, वेदांत के चिंतन के द्वारा अपने अंदर जो वृत्तियों की आवृत्ति होती रहेगी तो कैसा, तो केवल सोने तक ही नहीं, ये तो नित्य प्रलय की बात है। सवेरे उठे ये हो गया जन्म, रात्रि में सोए हो गया मरण, सवेरे उठे सृष्टि प्रारंभ हो गई, रात्रि में सोएंगे प्रलय हो जाएगा। लेकिन एक जो मरण काल है जहां पर फिर दोबारा उठेंगे, लेकिन प्रेमपुरी आदि में नहीं आ पाएंगे, फिर कहां जाएंगे भगवान जाने। तो आ सुप्ते आ मृते, आ का वहां अर्थ लिया आ आंग समंतात, जब तक सो ना जाओ, नींद ना आ जाए, तब तक वेदांत का चिंतन हो, और जब तक ये शरीर न छूट जाए तब तक वेदांत का चिंतन चलना चाहिए। तो एक दिन दो दिन की बात नहीं है, जब से शुरू किया है अब तो किधर की ओर भाग रहे हैं? बोले आगे की ओर भाग रहे हैं। आगे 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 क्या देख रहे हैं? बोले आगे परमात्मा ही तो है। ऐसी वृत्ति बनाओ। आ सुप्ते आमृते कालम नएद वेदांत चिंतया क्वचिद न अवसरम दद्यात्, कभी भी ऐसा अवसर न देवे जिसमें अनात्मा के चिंतन की गुंजाइश हो। हां, अनात्मा को भी आत्मा के रूप में देखने लग जाओगे ना तब तो आनंद आएगा, यही जीवन मुक्ति का लक्षण बताया था। अभी हम लोग आत्मा और अनात्मा के भेद को नहीं जान पाते, और कई बार अनात्मा ही आत्मा जैसे लगने लगता है, और आत्मा का तो बोध हो ही नहीं पाया है अभी तक, इसलिए समस्या बनी हुई है। तो क्वचिद न अवसरम दद्यात, कामादि नाम, काम आदि से लेने कामना आदि। इसलिए जब परीक्ष लोकान कर्म चितान होगा, उसमें होने वाला जो निर्वेद है, जिसका अर्थ किया था सर्व त्यक्तेषणा, संपूर्ण ऐषणाओं का त्याग करना। ऐषणा मतलब कामना, कामना की जो अपेक्षा करेगा वह स्वाभाविक रूप से आत्मा की उपेक्षा करेगा। हा? कामना की अपेक्षा तो आत्मा की उपेक्षा, और उपेक्षित आत्मा से आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। अनात्माओं के प्रति अपेक्षा है और आत्मा की उपेक्षा है, यह जिसमें भी देखा जाए समझ लेना चाहिए अभी वह कामना वाला है। तो प्रत्येक पुष्पेंद्र सरस्वती जी की बात बता रहा था, इतने वो बचपन से उनके ऐसी वृत्ति थी हमेशा आत्मचिंतन में लगे रहना। तो उनके गुरु जी को गांव वाले लोगों ने शिकायत की। एक बार वो कहीं खेत के मेड़ पे लेटे हुए थे, तो सिराना रखा मेड़ पे, तो कोई जो हल जोतने वाला किसान आ रहा था उसी रास्ते से, बोलता है कि बनता है बाबा, अभी तकिए का शौक नहीं गया। तो उन्होंने अपना सिर तुरंत नीचे कर लिया। अब गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि ये तो पागल हो गया है, लेकिन उनके गुरु जी को पहचान थी अपने चेले की। जब उनके गुरु जी से किसी ने शिकायत की आपका चेला पागल हो गया, वो कहने लगे मैं तो कहने भर के लिए गुरु हूं, वास्तव में वो तो मेरा भी गुरु है। जिस वृत्ति में वह रहता है ऐसी वृत्ति यदि हमारी भी बन जाए तो समझ लूंगा कि मैं धन्य हो गया। कई बार ऐसा होता है, बेटा भी बाप से आगे निकल जाता है, चेले भी गुरु से आगे निकल जाते हैं। ऐसे उनके गुरु जी ने स्वयं कहा है कि जो उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं यही है योगारूढ़ सतस्यैव समः कारण मुच्यते। जो साधक अवस्था में समता की बात की गई, मनोनिग्रह समः, वही योग में आरूढ़ होने के बाद भी क्या होना चाहिए, सम। योगारूढ़स्य तस्यैव, आरुरुक्षर मुनेर योगम। आरुरुक्षों की बात अलग है, लेकिन जब आरूढ़ हो गया तब क्या कहा है कि वहां एकमात्र शमन यही होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ब्रह्मज्ञानी के चेहरे में कोई मलिनता नहीं आती, कोई खिन्नता नहीं होती, किसी के बात से वह प्रसन्न नहीं होते, ना ही वह कभी दुखी होते हैं। हमेशा उनके चेहरे में ऐसी मुस्कान दिखाई देती है। इसी को बोलते हैं, इसका नाम रख सकते हैं आप ब्रह्म मुस्कान। इसका नाम क्या है, स्तमित मुद्रा बोलते ना, स्तमित मुद्रा। एकदम चेहरे में ये जो हम लोग जोर जोर से हंसते हैं ना, ये तो अलग हंसना है। प्राय कई बार हम गम को अंदर दबा के बाहर हंसते हैं, अंदर तो गम है और बाहर हंस रहे हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी की हंसी में ऐसी बात नहीं है, ना अंदर कोई गम है, इसलिए उनको कह सकते हैं ये बेगम है, गम रहित है, कोई चिंता नहीं इनको। प्रत्येक पुष्पेंद्र सरस्वती के अंदर के जो भाव है, वैराग्य की जो वृत्ति है, ये सब तो स्वाभाविक वैराग्य है। प्रत्येक पुष्पी प्रसव विधया यस्य पुंसो निसर्गात, नैसर्गिक है वो। प्रत्येक वक्त्रो भवति हृदयम्, जब हमारा मुंह हमारी ही ओर हो गया, ब्रह्मा जी ने भले ही बनाया था बाहर की ओर देखने के लिए, लेकिन जैसे मछली ने ऊपर चढ़ने का प्रयास किया पानी को ऊपर की ओर ले जाना, वैसे जो हमारी वृत्ति संसार की ओर थी उधर से हटाकर अब किधर ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर, यही पुरुषार्थ है। इसके लिए स्वाभाविक वैराग्य हो तो बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक वक्त्रम भवति हृदयम्, वक्त्र का मतलब मुंह होता है, उस आत्मा का जो मुंह है, भवति हृदयम्, अपने हृदय की ओर हो गया। कस तदन्योस्ति धन्या, ऐसा कौन होगा जो अपने आप को धन्य माने। लोग बोलते मैं तो आपसे मिल के धन्य हो गया, आपसे बात करके धन्य हो गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैं अपने आप को जो जान गया इसलिए मैं धन्य हो गया। सबसे बड़ा यही है। वो पंचदशी में जगह जगह आता है, धन्योहम धन्योहम कृतकृत्योहम, ये सब आता है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद पहले अपने आप को दीजिए कि जिसके लिए ये जन्म मिला था उसको हमने सफल कर लिया। अब ये तो स्वाभाविक वैराग्य की बात हुई। एक जो कृत्रिम वैराग्य है, बनावटी वाला वैराग्य, ये प्रायः हम लोगों में अधिकता से मिलता है। शांतो बहनिर जठर पिठरे संस्थिता काम वार्ता। बहनिर जठरे, पेट की जो जठराग्नि है ना, अब क्या हो गई है, शांत हो गई। पांच सात रोटियां खा जाते थे, हजम हो जाती थी। अभी तो दो रोटी खाना भी मुश्किल, और यदि खा भी लिया तो हजम करना मुश्किल। शांतो बहनिर जठर पिठरे संस्थिता काम वार्ता। जिन जिन कामनाओं की पूर्ति करता था अपने इंद्रियों से, अब वे इंद्रियां भी क्या हो गई है, शिथिल हो गई है। सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। वहां भर्तृहरि जी बोलते हैं, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली। शरीर क्या हो गया है, सिकुड़ गया। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, चलने की गति भी अब विगलित, ढीली हो गई, शिथिल पड़ गई। भ्रष्टा च दंतावली, दांत क्या हो गए, सब के सब झड़ गए। दृष्टिर्नश्यति, दिखना बंद हो गया। वर्धते बधिरता, कान में क्या आ गया, बहरापन आ गया। वक्त्रम चलालायते, सिर भी दो तरह का हिलता है, किसी का हिलता है बुरा मत मानना, किसी का तो ऐसा हिलता है और किसी का ऐसा हिलता है, दोनों का क्या अर्थ है मालूम नहीं। एक का तो दोनों का अर्थ किसी ने ऐसा बताया, बोले ये जो है ना, जीवन में कुछ नहीं किया, और ये जो होता है, बोले आगे क्या है, इसके आगे क्या है, अभी भी उसके देखने की इच्छा बनी हुई। वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, जवानी में तो आपकी तूती बोलती है, आने वाले हो गाड़ी के हॉर्न सुन के बच्चे पहचान जाते पापा आ गए, दरवाजे पे धमक पड़ी नहीं कि मालूम पड़ गया, पापा के घंटी बजाने का ही ढंग अलग है। अलार्म जो बजाते हैं ना घर के, ये घंटी तो पापा ही बजाते हैं इसे, लेकिन जब एक समय आता है तो पापा घंटी क्या बजाए, सामने भी खड़े हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे मुनीम जी थे दिल्ली में, अब तो गुजर गए, तो उनके पैर में एक जो छोटा सा पक्षी कोई आया उड़ करके और चोंच मार रहा था, तो उसको भगा रहे थे, चल भाग थोड़े साइड में हट जाए फिर आ जाए। तो वो बोलते हैं मेरे को कि देखो इस पक्षी को भी पता हो गया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं उसको उड़ा नहीं पा रहा हूं, भगा नहीं पा रहा, और ये मुझे बार बार आकर के तंग कर रहा है। यदि मैं जवान होता तो छोड़ता इसको, तो मैं कब क्यों उड़ा के भगा देता या मार देता। लेकिन वो बैठे थे, चला नहीं जाए, बोला नहीं जाए ज्यादा, पक्षी को ऐसे हट हट थोड़ा हट जाए फिर आके काटने लग जाए। तो ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि बस, उस दिन बताया था ना आप लोगों को, सवेरे जो 7:30 से 8:30 हम लोग आते हैं, इस समय तो यमराज भी बाहर ही वेट करते हैं, अंदर तो आ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे समय में प्राण निकलना मुश्किल है। स्वाध्याय करते हुए, वेदांत पढ़ते हुए, माला जपते हुए, बहुत कम लोगों को ऐसी चीजें नसीब होती है। हम नहीं बोलते कि आप ऐसा नसीबदार बनो, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे यदि कष्ट पा करके तड़प तड़प के मरना पड़े तो इससे तो अच्छा यही है, आए शांति पाठ हुई, कथा सुने, 8:30 पूर्ण मदह शुरू हुआ और इधर हम तो चलते बने, कितना अच्छा होगा। ऐसा नसीबदारों को मिलता है, चाहे गंगा जी में नहा करके बैठे माला जपने के लिए, वहीं लुढ़क गए, मंदिर में शिव जी का पूजन किया, बाबुलनाथ जी के दर्शन करके बाहर निकले और वहीं पर चले गए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन ये नसीबदार भाग्यशालियों को मिलता है, ऐसा सबको नहीं मिलता। वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो, वृद्धावस्था में इतना कष्ट होता है कि अपने ही लोग हमारे वाक्यों का निरादर करते हैं, आदर नहीं देते। यहां तक कि भार्या न शुश्रूषते, पत्नी भी कन्नी काटने लगती है, बोलते बच्चों का काम है सब करना, आप बैठे रहो ना, माला जपो ना, प्रेमपुरी चले जाओ कथा सुनने के लिए, क्यों यहां बैठे रहते हो घर में। वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो, भार्या न शुश्रूषते, हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस। ये जो जीर्णावस्था वृद्धावस्था है बहुत ही कष्टदायक है। पुत्रो अपि अमित्रायते, पुत्र भी क्या हो जाते हैं, अमित्र हो जाते, मित्र के समान बर्ताव नहीं करते। इन चीजों को देखकर वृद्धावस्था आदि, फिर भी लोग क्या चाहते हैं, नहीं रोटी हजम हो रही है तो कुछ दवाई आदि खा करके हजम करो, चला नहीं जाता तभी कोई हमें दूसरे चला करके ले चले, जब चलने लायक थे तब तो यहां आए नहीं। इसलिए प्राय देखते हैं कुछ जगह ऐसा नियम है, शरीर छूटने के बाद मंदिर के सामने से यदि लाश जाती है तो मंदिर का दरवाजा बंद कर देते हैं, मुर्दा जा रहा है इसीलिए। हाँ, दक्षिण में तो खास करके है ऐसा। और इधर के लोग बोलते हैं कि जब शरीर छूटे तब तो कम से कम मंदिर के सामने ले जाओ, ये तो बता देवे कि भाई जीते जी तो आया नहीं, तो मुर्दा मरने के बाद तो आया कम से कम। तो ऐसा अलग अलग भाव है। तो शांतो बन्नीर जठर पिठरे संस्थिता काम वार्ता, धावम धावम दिशि दिशि स नहीं इंद्रियाश्वा निपेतु। चारों दिशाओं में दौड़ दौड़ करके ये इंद्रिय रूपी घोड़े अब थक गए, इसलिए क्या करें। तो बोले भाई अब जो है एवं दैवात पर समम अगात, भगवान की कृपा से प्रारब्ध के अनुसार अब अपने आप जो इनमें शिथिलताएं आ गई है, जो इंद्रिय रूपी घोड़े जो थक गए हैं, अब समझ लेना चाहिए कि इससे ज्यादा कुछ काम होने वाला नहीं है। तो ये कुछ जरूरी है क्या, जवानी में जिस चीज का अभ्यास किया होगा ना, बुढ़ापा में वही काम में आता है। यदि आपने जवानी में खूब गीता पाठ किया, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, सत्संग किया, अब आपसे चला नहीं जाता, यहां आ नहीं पाते, तो घर में आपका समय इन्हीं चीजों में निकलेगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करोगे, कोई कैसेट लगा लोगे, देखो ना प्रेमपुरी में सबकी सीढ़ी बनती है, आपको जो कथा अच्छी लगती है सुनने में, जो स्वाध्याय अच्छा लगता है, वो आप अपना चलाते रहो सुनते रहो। ये तब होगा जब युवावस्था में अभ्यास किया होगा। अब युवावस्था में तो कभी सत्संग आदि किया नहीं, बुढ़ापे में संसार का काम तो होना बंद हो गया, अब लगे परमार्थ में, और परमार्थ का संस्कार है नहीं। भले वो सीढ़ी भी लगा दोगे तभी दूसरी बात करेंगे वो, क्योंकि उससे संस्कार नहीं है ना, सुना नहीं। तो एवं दैवात परसम ममगाद वैरी बरगो ममायम, ये जो हमारे शत्रु समुदाय थे जिनसे हम परेशान थे, ये तो मानो अपने आप सब ठीक हो गए। चेतस्त्वेकम न वशम अयते, ये हमारा जो चित्त है वो अभी तक अपने वश में नहीं हुआ, इसलिए किम करोमि क्व यामि, क्या करूं कहां जाऊं समझ में नहीं आता। ये है कृत्रिम वैराग्य का स्वरूप, बनावटी वैराग्य। मन शांत हो गया तो मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली बात है। जब सारे लोक में व्यवहार करने के बाद, परीक्षण करने के बाद जो वैराग्य होगा कि नास्ति अकृतः कृतेना, वह अकृत जो परमात्मा है कृत के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही जाएगा कहां, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाए और वहां पर ये प्रश्न करे, पूछे गुरु कैसे हो, उनका भी लक्षण किया कि श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्रों को जो सुनते हो सुनाते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन में आचरण करते हो उनको श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ कहा है। केवल सुनाए सुने नहीं, वो श्रोत्रिय नहीं होते। श्रोत्रिय का अर्थ किया जो सुने भी और सुनाए भी। और गुरु वही बनेंगे ना जिसके अपने गुरु होंगे, गुरुओं से सुना है, आज उनको आ गया तो दूसरे को सुना रहे हैं। इत्यादि श्रुते है, स्मृति का भी उदाहरण वासुदेव यति दे रहे हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना इति गीता वचनाच्च। च का अर्थ यहां ले रहे और श्रुति और स्मृति के द्वारा ये दो उदाहरण दिए। एवं शिष्येण प्रार्थितः सद्गुरुर्दयया दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संश्रय। जब हम उनके पास गए, प्रश्न किया, शिष्य के द्वारा प्रार्थित होने पर, प्रार्थना किए जाने पर, सद्गुरुर्दयया सद्गुरु के दया के द्वारा क्या मिला हमको प्रसाद के रूप में, तो सत्व रजस तमो गुणेर जीवेश्वर जगताम। सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुण से युक्त जो जीव और ईश्वर, ईश्वर में भी तीनों गुण हैं, ठीक है वो तो माया बिंबो वशीकृत्य है, बाकी तीन गुणों को लेकर के तो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बने ना, तो ऐसे तीन गुणों से युक्त ईश्वर, तीन गुणों से युक्त जीव का किस प्रकार से इस जगत में आगमन हुआ, ये कैसे आए, आगमन प्रकारम बोधयित्वा बता करके, और आत्मस्वरूपम अपि आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है, इसको गुरु ने शिष्य को कैसे बताया, तो यहां उदाहरण दे रहे हैं करतल आमलक वत। करामलक तदबोध प्राक परोक्षम आप घोष भाषते, ऐसा पंचदशी में भी जगह आया, पहले प्रकरण में ही ऐसा है। करतल आमलक वत, जैसे आंवला सुस्पष्ट हाथ में ऐसे दिखाई देता है ना, उस प्रकार से वह ज्ञान आत्मस्वरूप का बोध गुरु जी ने कराया। बोधयति करतल आमलक वत। अस्य अधिकारिणः साधन चतुष्टयम् च, ये जो वेदांत शास्त्र के जानने वाले जो अधिकारी है, जिस आत्मस्वरूप का बोध हुआ, गुरु जी ने जो ज्ञान दिया, ये साधन चतुष्टय, चतुष्टय रूपी संपत्ति किसको प्राप्त होती है, कि कैसे मिलता है, तो कहा बहुजन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाक वसात। जैसे आत्मदेव को गोकर्ण जी बोलते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य का उदय कब होता है, ये एक जन्म दो जन्म का नहीं है, जब समय आपके अच्छे आते हैं ना, चाहे लोग कितने भी टांग खींचने की कोशिश करें कुछ भी नहीं होने वाला। और हमारे भारत की तो परंपरा ऐसी है कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो पीछे से उसके लोग टांग खींचने वाले होते हैं, तो भारत का विकास इसलिए तो नहीं हो पा रहा है, यदि छोड़ देवे तो। एक बार एक जगह ऐसी मीटिंग बुलाई गई और उसमें यह कहा गया कि हर देश के लोग भाग लें, जिसमें एक भारत का भी प्रतिनिधि था, सबसे कहा गया कि अपने अपने बोतल में एक चूहा लेके आना। सब इकट्ठे हुए, बोतलें रख दी गई मैदान में, रात्रि का समय था, सवेरे फैसला होना था। जब निर्णायक आए तो सभी की बोतलें खाली थी, लेकिन भारतीय के बोतल में चूहे थे। सबने कहा ये क्या हुआ, निर्णायक ने कहा हो गया निर्णय, यही होना था, आप लोगों के बोतल में एक चूहा था, इसलिए वो तो निकल के भाग गया। लेकिन भारतीय बड़े बुद्धिमान होते हैं, बोले इसने दो चूहे रख दिए थे, तो ऊपर वाला चूहा रात भर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन नीचे वाला चूहा उसकी पूंछ खींचता रहा, इसलिए निकल नहीं पाया। ये हमारे भारतीय परंपरा, ऊपर कोई जावे तो उसको नीचे की ओर खींचने की तो सब कोशिश करते ही हैं, लेकिन काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, जैसे वहां पर नैवा कृति ही नैव कुलम न शीलम, समय आपके अच्छे हैं तो वहां सुंदर लोग भी अभागे होते हैं, और जिसके रूप सुंदर नहीं वो भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो क्या निर्णय करोगे कि सुंदर आकृति से ही भाग्य खिलता है, ये भी नियम नहीं बन सकता। जो सुंदर नहीं होते उनका भाग नहीं खिलता, ये भी नियम नहीं बना सकते, क्योंकि विपरीत तो देखा गया है। नैवाकृति ही नैव कुलम न शीलम, अच्छे कुल में पैदा हो, अच्छा स्वभाव भी हो, फिर भी अभागे जो होते उनको कष्ट ही भोगना पड़ता है। लेकिन जब समय अच्छा आता है तो अच्छे कुल हो चाहे न हो, अच्छा स्वभाव हो चाहे न हो, सुंदरता न हो तो भी चलेगा। काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, उदाहरण दिया कि जैसे पेड़ तैयार होने के बाद समय आने पर अपने आप फल देने लगते हैं, वैसे जब हमारे अपने कर्म फल प्रबल हो जाते हैं देने के लिए, तो उस समय कोई कितने भी विरोध करे, टांग अड़ाए, कोई रोक नहीं सकता। तो यहां जो हम लोग अभी स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं, इसमें उदाहरण दिया है कि बहु जन्मार्जित, एक जन्म दो जन्म की बात नहीं, बहु जन्म, अनेक जन्म हुए, और तत्तत जन्मों में हम लोगों ने अर्जित पुण्य पुंज, जो पुण्य कमाए थे उस पुण्य का समूह इकट्ठा हुआ पुण्य पुंज, और उसके परिपाक होने पर, पकने पर, तैयार होने पर ही ईश्वर के अनुग्रह हुआ। जब पुण्य पक गया तो क्या हुआ, ईश्वर के अनुग्रह से ही ऐसा अवसर मिलता है। इसलिए देवानुग्रह हेतुकम, जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक इस मार्ग में लग ही नहीं सकते। एतत् तत्व ज्ञान प्रदायकम गुरुम ईश्वरम एव विद्यात, जिस तत्व ज्ञान को प्रदान करने वाले गुरुदेव हैं उस गुरु में और ईश्वर में अभेद बुद्धि करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाली बात करो, अथवा वो जो आता है ना कि ईश्वर और गुरु दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, इसमें कभी भी जिसकी जैसी भावना होगी उसको ऐसा ही फल मिलेगा। तो यहां एतत् तत्व ज्ञान प्रदायकम, तत्व ज्ञान के प्रदान करने वाले जो गुरु है ईश्वरम एव, ईश्वर ही है ऐसा जाने। एवं यो गुरु मुखात जीव आत्म परमात्मनोः अभेदम विचार्य, गुरु के मुख से श्रवण करने के बाद जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, ऐसे अभेद का विचार करके जो अपने स्वरूप को जानता है स एव मुक्तिम गमिष्यति इति सिद्धम, उसका मुक्त होना निश्चित है, पक्का हो गया है। जो जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का बार बार विचार करता है, अभी तक तो हमारे अंदर क्या था, भेद बुद्धि दृढ़ थी, गुरु के मुख से सुनने के बाद जो अभेद ज्ञान हुआ उसमें जब दृढ़ता आ जाती है तो उसका मुक्त होना निश्चित हो जाता है। आगे तृतीय वर्णक प्रारंभ होगा, पिछले वर्णक के साथ इसका क्या संबंध है, ये सारी बातें फिर कल करेंगे। ओम।